डियर, एक मिनट मुझे देखो।
हाँ कहो।
नहीं, मेरी तरफ देखो। देखो जाओ, जाओ और वापस मत आओ, सिर्फ मेरा हक मेहर दे दो।
क्या दूं?
मेरा हक मेहर। क्या इन चंटकों से सब कुछ हल हो जाएगा?
मुझे तुम्हें पहले ही नजर में पहचान लेना चाहिए था।
नहीं, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम कितने बेगैरत और कमीने इंसान हो।
घर के एडवांस का पैसा अपने हक मेहर के बदले ले लेना। इसके बाद मुझे कभी किसी काम के लिए फोन मत करना। फरहाद मर गया है।
जहन्नम में जाए।
जी अब्बू जान, उसने गलती की जो मान गया।
तो उसे फोन करो, उसे फोन करके कहो कि तुमने गलती की जो मान गए।
मैं तो आपसे नाराज हूँ, मुझे नहीं लगता था कि आप इस कदर मादी लिहाज से मेरी जिंदगी के बारे में सोचेंगे।
किताबें बातें नहीं करो नाजनीन, आजकल आधे गिरानों की जिंदगियां मादियात की वजह से खराब हो रही है, समझ रही हो? अब तुम बड़ी हो गई हो।
हाँ तो क्या आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत अम्मी के साथ ऐसी नहीं की थी? आपकी तो जिंदगी खराब नहीं हुई।
तुम मुझे स्वराहमन के साथ मुकायसा कर रही हो। भाई मैं अपनी जिंदगी का हदफ जानता था और उसके पीछे चल रहा हूँ।
तो आप लोगों ने क्यों ऐसी शर्तें नहीं रखी कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं खत्म की?
कब से जिंदगी के उमूर के लिए शर्त शुरूत रखना जरूरी हो गया है? जो भी यूनिवर्सिटी जाएगा उसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना जरूरी है क्या? मैं नहीं चाहता हर खास आम मेरा मजाक उड़ाए। उसने पढ़ाई छोड़ दी है क्या?
मेरा असल ये मकसद नहीं है इन सब बातों का आप छोड़िए। असल बात ये है कि आपने कोई भी ऐसी शर्त नहीं रखी जो मादी ना हो, सब मादी शर्त।
सलाम, मैं आ गई। कैसे हैं अबू जान? खाने में क्या है? अम्मी जान,
क्या
भूख से मैं मर रही हूँ।
अब तक कहाँ थी?
फिर से
नसरीन
जी,
इस्वर अहमद ने पढ़ाई छोड़ दी है क्या?
जी हाँ।
झूठ, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? तुमसे क्या मतलब है?
अम्मी जान, हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अबू जान दो टर्म हुए पढ़ाई छोड़े हुए उसे।
तुम क्यों फजूल में बोल रही हो?
अबू को जानने दे अम्मी जान, अबू से ही कहते हैं क्या लड़का पसंद किया इसने।
तुमसे क्या ताल्लुक है?
बहुत ताल्लुक है अम्मी जान। कल को जब मेरा रिश्ता आएगा तो क्या वो नहीं देखेंगे इसकी बड़ी बहन का शोहर कैसा है?
इतना उसको चाहने लगी हो?
धीरे से, बाहर कोई सुन लेगा।
यानी कि तुम इतनी बेचारी हो गई हो कि ऐसे लड़के की बीवी बनना चाहती हो जो अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं कर सकता? अफसोस है।
खुदा की कसम अबू, सच कह रहे नाजी बहन। देखो तुम खूबसूरत हो, अपनी क्लास में फर्स्ट आती हो, यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे लड़के किसी और को तुम पसंद कर लो।
अब तुम पीछे ना पड़ो।
मैं तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ नाजनीन, कल को जब तुम देखोगी कि तुम्हारा शोहर मेरे और बाहर के शोहर से कमतर है तो कौन परेशान होगा? तुम। मुझसे कमतर नहीं हो तुम। अभी एक हफ्ते से डॉक्टर रुजबानी का बेटा मेरे पीछे लगा हुआ है रिश्ते के लिए, लेकिन मैंने घास नहीं डाली। लेकिन ये मेहरान फराहमन हत्ता तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने पर तैयार नहीं है।
रुजबे रुजबानी?
जी हाँ, यही रुजबे साहब जो किसी को देखता तक नहीं, एक हफ्ते से मेरे पीछे लगा हुआ है कि मेरे साथ बात करे, लेकिन मैंने हत्ता उसको बात करने की मोहलत भी नहीं दी। इंसान को अपनी हैसियत का खुद ख्याल होना चाहिए, समझी?
बीता बीता, मैं तुमसे कुछ कहूँ तो करोगी? प्लीज
काम बताओ, काम बताने से पहले प्लीज प्लीज कर रही हूँ।
देखो मेहरान दो सेमेस्टर से यूनिवर्सिटी नहीं आया है, यूनिवर्सिटी बोर्ड को भी खबर नहीं है। तुम डॉक्टर इस बहाने से बात कर सकती हो कि ऐसा कुछ करें कि मेहरान दोबारा पढ़ाई शुरू करे।
क्या मैं डॉक्टर रुजबहानी से कहूँ?
नहीं नहीं, उनके बेटे से।
क्या मतलब, मैंने अभी तक उसे मुझसे बात करने की इजाज़त नहीं दी।
देखो बेटा बहन, अगर ये लोग मेहरान को दोबारा आने पे तैयार कर लें तो मैं कसम से वादा करती हूँ कि उसको दोबारा पढ़ाई छोड़ने नहीं दूंगी।
मुझे जरूरत नहीं हो रही, मैं कैसे ऐसी चीज मांग सकती हूँ उससे। यार हमारी आपस में अभी तक बात तक नहीं हुई है।
अरे मैं अभी नहीं कह रही हूँ ना, जब तुम्हारी बात पक्की हो जाए।
मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कह रही हो? यार मैं कह रही हूँ अभी से ही मैं इसे कुछ मांगूंगी तो मेरी हैसियत खराब हो जाएगी।
बेटा
इसके अलावा यूनिवर्सिटी का अपना कानून होता है, यूनिवर्सिटी के डीन अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता।
कसम से कर सकते हैं, कसम से। बहुत से लोगों को वापस लाए, तुम कह तो दो, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है यार।
फिलहाल तो उसने मेरा रिश्ता नहीं मांगा, पहले रिश्ता मांगने तो फिर
कहोगी।
नाजनीन फोन करके वो कहना देना उससे, शायद ना हो सके।
ठीक है ठीक है ठीक है, कसम से नहीं कहूंगी, लो नहीं कहूंगी।
महनूश मेरा फोन है, महनूश
घंटी बज रही है।
हेलो
खुदा के लिए महनूश, वादा करती हूं आइंदा ऐसा नहीं होगा।
रोहित साहब ने नहीं पूछा कि मैं क्यों नहीं आई?
क्यों नहीं, मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है। महनूश तुम नहीं मानोगी तो मुझे मजबूरन अपना काम छोड़ना पड़ेगा, तुम तो जानती हो मैं हर रोज काम पर नहीं जा सकती। अब तो मैं उनसे लोन भी ले चुकी हूं।
लोन किससे?
फर्म से। रूही साहब से कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, उन्होंने भी ऑर्डर दिया कि मुझे 2 मिलियन दे दिए जाए, मेरी तनख्वाह और ईदी वगैरह से काट लेंगे बाद में। ये लो तुम्हारा मोबाइल,
इसको ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए।
क्यों नहीं चाहिए, उन्होंने तुम्हारा फोन तोड़ा था, उसकी जगह दूसरा तो लेना
नहीं
था।
नहीं चाहिए, ले जाकर वापस कर दो उसे।
ऐसी बात भी ना करना, वापस दे आऊं ताकि दूसरों के साथ भी इसी तरह का सलूक करे। अगर तुमने ये नहीं लिया तो मेरे लिए भी बुरा हो जाएगा, कल कल आपको मेरे साथ भी यही सलूक करेगा। इस्माइल को जान लेना चाहिए कि अगर बुरी बात कहेगा या बुरा काम करेगा तो खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मैं सदके जाऊं, मान लिया ना तुमने?
समाना उसको कह दो कभी भी ना मेरी तरफ आए ना मुझसे बात करे।
तुम बेफिक्र रहो, बता दिया है मैंने, ठीक है। ये लो दुकान का कार्ड है, ये दुकानदार को बताया कि तुम्हारा फोन गिर गया था, उसने कहा कि टूटे हुए सेट को ले आए, मैं पूरा डेटा नए सेट पे मुंतकिल कर दूंगा। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है।
यही जगह है, यही जगह है बेटा, आयशा बाश, यही जगह है।
ठीक है।
मैं सद के जाऊं,
खुदा ना करे। बेहतर महसूस करें दादाजान?
जी बेटा जी, मैं सदके जाऊं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा।
हुमा कहती है कि इनके कंधों का दर्द इन्हीं फोम्स की वजह से है, घिस घिस के खत्म हो गए लेकिन नेमत साहब बदलवाते ही नहीं हैं।
बुढ़ापा है बेटा, मुझे इन फोम्स की आदत हो गई है, किसी और फोम पर नहीं सो सकता।
काम तो नहीं है?
नहीं बेटा, मैं कुर्बान जाऊं।
शब बखेर। तुम भी जाके आराम कर लो बेटा।
جی اچھا، شب بخیر دادا جان.
شب بخیر.
شب بخیر بیٹا.
پرستو جا کے سونا جانا.
کہاں جا رہے ہیں؟
ذرا پھوپھی کے پاس جا رہا ہوں. تم بھی آؤ.
میں تھکی ہوئی ہوں.
جی
پھوپھی جان.
ہاں.
میں چند منٹ آپ کا ٹائم لے سکتا ہوں؟
کیوں نہیں بیٹا، آؤ آؤ اندر بیٹھو.
ٹھیک ہے. اصل میں آج سوریا پھوپھی کے گھر گیا تھا.
اچھا.
وہی ہوا جو آپ نے کہا تھا. وہ ہم سے سخت ناراض ہے.
تمہیں دکھ ہوا؟
آپ جانتی تھی کہ وہ سوچتی ہیں کہ ابو نے میراث میں ان کا حصہ کھایا ہے.
اچھا.
میں نے ابو سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اچھا، تو ابو کی باتوں کا یقین نہیں کیا اس لیے میرے پاس آئے؟
نہیں.
تو پھر؟
نہیں معلوم.
مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی. سریا پھوپھی کو اپنا پورا حصہ چاہیے تھا، ابو نے بھی پورے کا پورا دے دیا.
اور حمید چچا کا حصہ؟
تمہارے حمید چچا کو تو اپنے حصے سے بہت زیادہ ملا. اس نے ابو سے کچھ پیسہ قرض لیا تھا ظاہراً اپنی دکان کی سیٹنگ کے لیے، لیکن جب پورا پیسہ نہیں لوٹا سکا تو ابو نے کچھ نہیں بولا. ابو کے لیے صرف یہی گھر رہ گیا تھا. پھر انہوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کچھ ہو جائے اور مجھے اپنا حق نہ ملے، تو زبردستی یہ گھر میرے نام کر لیا.
کیا سریا پھوپھی کا گھر میں بھی حصہ تھا؟
نہیں، اس نے اپنا پورا حصہ لے لیا تھا، اپنے پیسے سے ایک نیا گھر خریدا اور باقی اپنے شوہر کو دیے کاروبار میں لگانے کے لیے.
ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں؟
نہیں، کبھی کبھی اسد اللہ صاحب نظر آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں اور فریش.
لیکن جب میں گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا. وہاں پر
کیونکہ وہاں نہیں ہے، وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتے ہیں.
تو کیا وہ الگ ہو گئے ہیں؟
نہیں، پھوپھی کو طلاق نہیں دی، یعنی سریا پھوپھی نے خود طلاق نہیں مانگی، اور پھوپا اسد اللہ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی. سنائے کبھی کبھی ان کو دیکھنے جاتے ہیں.
ان کے شوہر نے دوسری شادی کیوں کر لی ہے؟
یہ بہت پرانی بات ہے، جب ہم بہت چھوٹے تھے. سریا پھوپھی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے جا کے دوسری شادی کی کیونکہ اسے بچے چاہیے.
کیا دوسری بیوی سے بچے ہوئے ان کے؟
نہیں، ان سے بھی نہیں ہوئے، لیکن پچھلے شوہر سے ان کے 3 بچے ہیں.
اچھا، شاید یہی باتیں جو سوریا پھوپھی نے مجھ سے کہیں مسعود چچا سے بھی کہی تھی.
کیا بات؟
یہی کہ انہیں میراث میں سے حصہ نہیں دیا گیا اور اس طرح کی دوسری بات.
نہیں، مسعود بالکل لالچی آدمی نہیں تھے. اگر انہوں نے ایسا کچھ سنا ہوتا تو فوراً مجھ سے پوچھتے اور ان کو راضی کرتے، چاہے اس گھر کے دینے کی قیمت پر کیوں نہ ہو. اور ہاں، مسعود کو اگر اس بات کا شک بھی گزرتا تو یہاں نہ رہتے.
تو پھر آخر سوریا پھوپھی اس طرح کیوں سوچتی ہیں؟
اصل میں مجھے بھی نہیں معلوم کہ وہ کیوں ایسی باتیں کرتی. وہ خود بھی جانتی ہیں کہ ان میں سے کسی بھی بات میں کوئی حقیقت نہیں. تم نے انہیں کہا کہ حمید کو ڈھونڈ رہے ہو؟
جی ہاں، جب ان کو پتا چلا کہ حمید چچا کا ایڈریس چاہیے تب یہ باتیں کہیں.
ایڈریس نہیں دیا نا؟
نہیں نہیں دیا.
یہی تو ان باتوں کے ذریعے تمہیں اپنے سر سے اتارنا چاہتی ہیں، تاکہ حمید کا ایڈریس نہ پوچھو.
لیکن کیوں؟
اگر کیوں کو پتا ہوتا تو ہم ان کو اپنے گھر واپس لے آتے. جانتے ہو میں سریا پھوپھی سے ناراض نہیں ہوں، حمید سے ناراض ہوں کہ اس آسانی سے اس نے اپنے سارے خاندان، رشتے دار سب کو چھوڑ دیا.
پھوپھی جان شب بخیر.
مہدی بیٹا، کچھ اور تو نہیں بتایا؟
نہیں 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 بتایا.
سریا پھوپھی نے میراث وغیرہ کے بارے میں جتنی باتیں کی ہیں سب بھول جاؤ.
कोई भी सच नहीं है। सुरैया फूफी ने अपना पूरा हिस्सा लिया, अपने हिस्से से भी ज्यादा अमित ने भी ले लिया।
शुक्रिया, शब बखैर।
शब बखैर बेटा।
परस्तु, लाइट क्यों बुझा दी?
सोने जा रही थी, कुछ चाहिए?
नहीं, उठो उठो, इधर आओ, जरा बातें करनी है। बहुत दिन हुए एक दूसरे से बातें नहीं की, उठो। परस्तु, मुझसे नाराज हो तुम? परस्तु,
मैं आपसे नाराज नहीं हूं। सुना है आखिरी महीनों में सभी ऐसी हो जाती हैं।
जानता हूं मुझसे नाराज हो, तुम्हें हक भी है।
अपनी अम्मी के घर गए थे?
क्यों?
मैं भी साथ जाना चाह रही थी ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। मैं उनके साथ बिगाड़ना नहीं चाहती।
आज तबीयत बहुत खराब थी, घर का एक चक्कर लगाया, अब उसे कोई बात पूछी थी।
उन्होंने मेरे बारे में नहीं पूछा?
ऐसा हो सकता है क्या? अम्मी ने जो ही देखा कि मैं दुखी हूं, पहले तुम्हारा पूछा। परस्तु, तुम मेरा वाहिद सहारा और इत्मीनान हो। तुम मुझसे अगर नाराज हो जाओगी तो मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा।
मैं आपसे नाराज नहीं हूं।
जानता हूं इनके साथ रहना तुम्हारे लिए सख्त है बहुत, लेकिन शायद ये एक बहाना बन जाए कि मैं हमीद चचा को घर वापस लाऊं इससे पहले कि दादा जान।
मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि यहां दादा जान लोगों के साथ रह रही हूं। मैं इस बात पर परेशान हूं कि हम आयशा से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जब से यहां आए हैं आप पहले की तरह मुझसे बात ही नहीं कर पाते।
परस्तु, मुझे माफ कर दो, पिछले कुछ दिनों से इन मुश्किलात और मसाइल की वजह जो दादा जान के लिए पेश आए, और मैं एक तरह से खुद को कसूरवार समझता हूं, और वर्षात मसाइल की वजह से बहुत मसरूफ हो गया हूं। लेकिन वादा करता हूं कि अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, पूरी तरह से ख्याल रखूंगा।
अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
खोल नहीं रही?
नहीं, मेरी फूफी का घर है, कल दरवाजे खोला था, डर रहा हूँ कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया है।
शायद सो रही हूँ।
मैंने जितने जोर से दरवाजा खटखटाया, अगर सो रही होती तो जाग जाती। खुदा खासा कुछ हो तो नहीं गया है?
नहीं डरो बेटा, इंशाल्लाह कुछ नहीं हुआ। जाओ असदुल्ला साहब के घर, उनके पास चाबी है।
उनका घर कहाँ है?
कैसे नहीं पता, बैंक रोड ब्लॉक नंबर 25।
शुक्रिया।
आजकल मैं दुआ कर रहा था कि तुम्हें देखूं। सुरैया को देखने का ख्याल कैसे आया तुम्हें आखिर?
असल में मैं हमीद चचा का एड्रेस ढूंढ रहा हूं, क्या आपको उनका कुछ अता पता है?
मुझे नहीं भाई, हमीद को तो मैं अच्छा नहीं लगता था। जिन दिनों हम सुरैया के घर में रहते थे, मेरी और सुरैया की हमेशा लड़ाई होती थी, इसलिए हमीद को मैं अच्छा नहीं लगता।
असल में असदुल्ला साहब, मेरी छठी हिस कह रही है, यानी मुझे यकीन है कि सुरैया फूफी के पास हमीद चचा का एड्रेस है, लेकिन चाहता हूँ आप एक एहसान करें मुझ पर, मेरे लिए उनसे ये एड्रेस ले लें।
काश कि ये बात तुमने सुरैया से मिलने से पहले मुझे बताई होती, अब तो वो भी मुझे नहीं देगी एड्रेस, क्योंकि समझेगी कि तुम्हें देने के लिए मांग रहा हूँ।
पता नहीं हमीद चचा को घर से दूर रखकर सुरैया फूफी को क्या मिलने वाला है।
इस लड़के के दिल में तमाम नफरत और कीना इन बातों की वजह से है जिनसे सुरैया ने उसके कान भरे, वरना हमीद बुरा लड़का नहीं था। चाय लो ना तुम आखिर।
जी
नोश जाम।
आप हमीद चचा के किसी दोस्त या किसी शनासा वगैरह को जानते हैं जिनसे उनका कोई अता पता मिल सके?
कहा ना भाई कि मुझे पसंद नहीं करता था वो, मुझे कोई इल्म नहीं कि कहाँ जाता है क्या करता है। जब भी कभी सुरैया से मिलने जाता था, मुझे देखकर बाहर निकल जाता था। आजकल बहुत जी चाह रहा था तुमसे मिलने और एक बात बताने, ताकि मरने से पहले तुमसे हलालियत एक मांग सकूं।
हलालियत मुझसे?
मैंने खुद तो कुछ किया नहीं, लेकिन जैसा कि कहते हो कि चुप रहना राजी होने की अलामत है, मैं चुप रहा, बुरा किया, लेकिन खुदा जानता है मेरा इरादा ये नहीं था कि आपका हक पामाल हो।
कौन सा हक, किस बारे में बात कर रहे हैं?
मुझे तुम्हारी कसम, मैं खुद भी उस वक्त तक नहीं जानता था, तुम्हारे अब्बू लोग वहां से चले गए, उस वक्त पता चला। उस दिन गया था सुरैया से ये कहने कि आओ दोबारा एक साथ रहते हैं। जानता था कि मोहसिन के जाने की वजह से नेमत साहब से उनका सख्त इख्तलाफ पैदा हो गया है। सोचा अगर मुनासिब मौके पर सुरैया से कहूँगा तो मेरे साथ आ जाएगी। जब वहाँ गया तो सब मशहद चले गए थे, कोई नहीं था वहाँ पर। आओ साथ चलते हैं, मैं खुद ही तुम्हारे लिए घर ले लूँगा। यहाँ किस लिए रह रही हो? क्या तुम नेमत साहब की नौकरानी हो?
बकवास नहीं करो, तुम जाओ अपनी बीवी के साथ, खुश रहो, मेरे साथ हमदर्दी ना जताओ। मेरा असल दर्द तो तुम ही हो।
सुरैया, मैंने नैयरे से मजबूरी में शादी की, तुम जानती हो इस बात को?
जानती हूँ, उससे पिल्ले पैदा करने के लिए शादी की थी, इसीलिए तो खुदा ने तुम्हें खूब सजा दी। अब मजबूरन तीन बेपेदर पिल्लों को पाल रहे हो।
तुम मुझसे जो भी कहोगी मैं नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सुरैया।
जाओ असदुल्ला, जाओ जाओ, ये वो ख्याल भी दिल से निकाल दो कि मैं इस घर में तुम्हारी बीवी के साथ रहूंगी।
तुम भी मेरी बीवी हो, तुम्हें भी मेरे साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। अब अगर राजी नहीं होती तो मैं नेमत साहब से कह देता हूँ कि मोहसिन साहब का कमरा मुझे दे दें, ताकि यहाँ आकर साथ रहें। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। जानती हो तुम कि नेमत साहब कभी भी मेरी बात नहीं डालते।
हाँ हाँ, तुम जाओ ये काम करो। उस दफा मोहसिन को उस घर से निकालने के लिए घर को मैंने आग लगाई थी, इस दफा इस नैयरा के बेपेदर पिल्लों को आग लगा दूंगी। जाओ करो।
जब मुझे पता चला कि सुरैया ने खुद ही घर को आग लगाकर इसे तुम्हारे सर मुंड दिया है, तो सोचा कि मेहंदी की खातिर ही सही मुझे जाके मोहसिन साहब को बताना होगा कि ये काम सुरैया का है, ताकि उससे ज्यादा बच्चे को डांटना पड़े। लेकिन सुरैया ने मुझे धमकी दी।
कैसे धमकी?
यही कि अगर किसी को पता चला तो वो खुद को मार देगी और बड़े जनाना मकरो हीले दिखाए। सुरैया जिद्दी औरत है, वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें सख्त थप्पड़ मारे, लेकिन मारने के बाद समझ गई कि गलत काम किया है। अब तो कान में दर्द नहीं होता तुम्हें?
नहीं, खुदा का शुक्र।
तुम्हारे माँ बाप उस हादसे के फौरन बाद वहां से चले गए।
मुझे याद है,
मैं भी उस दिन के बाद हिम्मत हार गया, क्योंकि अब किसी को नहीं बता सकता था कि असल बात क्या थी, क्योंकि बताता तो सब कहते कि उस दिन क्यों नहीं बताया। मैं भी डर गया था, अगर बताऊंगा तो सुरैया खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए चुप रहा आज तक। लेकिन अब समझता हूं कि अब आखिर आ गया है। ज्यादा वक्त बचा नहीं मेरे पास, और सोचता हूं कि अब लाजिम है तुम्हें बता दूं सब।
मैं उसी वक्त समझ गया था कि वो आतश सूजी, वो भी इतने बड़े पैमाने पर और इस तरीके से, हम बच्चों का काम नहीं हो सकता। लेकिन बाद में सब ने इतना कहा कि मैं कसूरवार हूँ कि मुझे भी यकीन आ गया कि ये मेरी गलती थी। उस घर में जो आग लगी वो हमारे खेल से लगी।
मैं सुरैया से बहुत प्यार करता था, लेकिन इस किस्से ने हमें एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया।
और हमी चचा, क्या वो हकीकत जान गए थे?
जी हाँ।
यानी हमी चचा भी जानते थे?
हाँ, एक दिन जब वर्कशॉप की तकसीम पर हमीद तुम्हारे अब्बू और नेमत साहब के दरमियान झगड़ा हो गया, तो हमीद सुरैया के घर चला गया। सुरैया ने जब हमीद को गुस्से में देखा तो इसके दिल को ठंडा करने के लिए कहा कि उस रात उसने खुद ही आग लगाई थी। लेकिन सुरैया के तसव्वुर के बरखिलाफ हमीद ना सिर्फ ये कि खुश नहीं हुआ, बल्कि बहुत गुस्सा हुआ और उसी रात अपने बीवी बच्चों का हाथ पकड़कर सुरैया के घर से निकल गया और अपने एक दोस्त के घर चला गया, और फिर अपने लिए घर लिया और कभी सुरैया के घर वापस ना आया। मेहदी बेटा, तुम सुरैया को माफ कर दो। उस औरत का गुनाह सिर्फ इतना है कि खुदा की मशीयत पर राजी नहीं होती। उसको बच्चे पसंद हैं, लेकिन बे औलाद है, तो उन तमाम लोगों से जिनके बच्चे हैं हसद करती है। तुम्हारे साथ बुराई करने का सबब भी यही था। कई दफा मुझसे कह चुकी है कि खुदा ने कुत्ते बिल्लियों को भी बच्चे दिए, लेकिन मुझे नहीं दिए। अच्छा जाने दो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लाया हूं। मेहदी बेटा, लो फ्रूट खाओ।
जहमत क्या आपने, लेकिन मुझे जाना है, मैं चलता हूं।
जानता हूं कि दोबारा यहां नहीं आओगे।
क्यों नहीं असदुल्ला साहब, आऊंगा। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
रुको जरा।
जी।
तुम्हें 10 दफा नहीं बताया कि ट्रे ले जाने से पहले मुझसे पहले चेक कर लिया करो?
ये लीजिए, चेक करिए। इंजीनियर साहिबा की बेगम भी इतना तवज्जो नहीं देती।
इंजीनियर साहिबा कौन है?
इंजीनियर साहिबा की बीवी ना, सीमीन साहिबा।
इंजीनियर साहिबा को अगर ध्यान होता तो इस वक्त ईरान में होती। जाओ फ्रिज में, मैंने एक प्लेट में मक्खन रखा है, उसको लेकर आओ।
इंजीनियर साहब मक्खन नहीं खाते।
मैंने कहा तो आप लेकर आइए।
ठीक है, जो आप कहें, फिलहाल तो आपका दौर दौरा है। ये लीजिए मक्खन। और कोई हुक्म नहीं है, ले जा सकता हूँ?
इनको ले जाने के बाद एक कप चाय भी ले जाओ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम समाना, कहाँ हो तुम? मेरी क्लास है।
मैं घर पर।
आपसे काम है उन्हें।
क्या? नहीं सुना मैंने।
कहाँ घर पर हूँ, आज नहीं आ सकती हूँ मैं।
समाना यार, पिछले हफ्ता भी तुम्हारी वजह से मैं क्लास नहीं गई, इस हफ्ते अगर नहीं जाऊंगी तो मेरा नाम कट जाएगा क्लास से।
लेकिन मुझे घर पर रुकना होगा, इस्माइल को यहाँ आना है।
क्यों, फिर क्या हो गया है?
अबू ने कहा है कि इस्माइल को आज यहाँ आना होगा ताकि उससे बात करें। मैंने अबू को बता दिया था कि इस्माइल ने क्या हरकत की, बहुत गुस्सा हो रहे थे वो।
अच्छा, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छी बात है कि तुम्हारे वालिदैन को पता चल गया।
इस दफा इसके साथ सख्ती से पेश आना चाहती हूँ, अपने इन कामों से मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। तुम तो आज मेरी जगह रुको, ठीक है?
अच्छा ठीक है।
इंजीनियर रूही साहब हैं?
हाँ।
पूछा नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्यों नहीं आई?
फरमान साहबा, आप नाश्ता नहीं करेंगी?
जी अच्छा, अभी आती।
आइए तशरीफ लाइए।
ठीक है समाना, अभी मुझे जाना है। चलो ठीक है।
इंजीनियर ने मेरा पूछा तो बताना कि कोई मसला पेश आया है। ठीक है
ठीक है ठीक है, मैं संभाल लूंगी। चलो खुदा हाफिज़। ला मुझे दो।
आइए तशरीफ लाइए।
माफ कीजिएगा, ये दरवाजा खुला रहे ताकि कोई आए तो मैं देख सकूं।
कोई बात नहीं, आइए तशरीफ लाइए। दोपहर हो गई, फोन करके देखो कहाँ है।
काजिम साहब, रात पर रख देते, लड़का सुबह काम पर जाता है, कहीं भाग तो नहीं रहा?
कल खुद बता रहे थे कि रात को नहीं आ सकता, कल सुबह पर रख लें।
आप दखल न दें, आज मुझे खुद इस मसले को हल करने दें। आप अंदर ना आइएगा, ठीक है?
अरे बाबा, कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं आप क्यों इस बात को बड़ा कर रहे हैं।
उसे फोन करके कहो कि अबू घर पर हैं, जल्दी आ जाए। तुम भी बाहर जाओ, जब तक मैं ना बोलूं अंदर मत आना।
जी
जी। कौन?
सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
खुश आमदीद, आइए काजिम साहब।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
आइए तशरीफ
लाइए। आप तशरीफ। सब ठीक है इंशाल्लाह।
खुदा से जो भी बंदे तक पहुंचे वो खैर है।
माफ कीजिए, ज़हमत किया आपने।
काजिम साहब जाते हैं, बेटा खाना बनाया, खाना खा के जाना।
जी बेहतर है।
अंदर कोई ना आए, मैं इस्माइल के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ।
ठीक है।
समाना नहीं है?
तुम्हें जरूर पता होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया यहाँ पर।
नहीं माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता।
कैसे नहीं जानते? भी सड़क में दूसरों का मोबाइल जमीन पर फेंक देते हो, तोड़ देते हो और कहते हो कुछ नहीं पता।
अच्छा तो ये बात है, कल को आधी रात फोन करके इसलिए बुला रहे थे कि मेरा मुहाकमा किया जाए।
कल रात तुमने कहा था कि मैं नहीं आ सकता, मैं भी मान गया। सिर्फ मेरी बात का जवाब दो, तुम खुद को काबू नहीं कर सकते?
क्या कहूं,
देखो इस्माइल
साहब। माफ कीजिएगा कासिम साहब, उन्होंने बात तो बता दी लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने मोबाइल क्यों तोड़ा। बताया आपको?
इसलिए कि मेरी बात ना काटो बेहतर है। पहले तुम अपनी बात करो, उसके बाद मेरी बात सुनो। हमारा मकसद लड़ाई झगड़ा नहीं है, बात को हल करना है।
البتہ اگر حل ہونے لائق ہو.
ہاں اگر قابل حل ہو. کہتے ہیں کہ خشتے اول گر نہد میمار کج تا سریا میرا و دیوار کج.
اب میں کہوں؟
ہاں بتاؤ.
دس دفعے اسے کہہ چکا ہوں کہ سڑک پر صحیح چلو, لیکن یہ لڑکی جس طرح چاہے اسے اپنی چھوٹی انگلی پر نچاتی ہے.
لڑکی کون ہے؟
مہنوش, سمانا کی دوست.
اس کا کیا مطلب ہے؟
کیا مطلب؟
ابھی تم نے کہا کہ یہ لڑکی جس طرح چاہے اسے اپنی انگلی پر نچاتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اسماعیل صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جب تم غصے میں آتے ہو تو انسانوں کی عزت کرنا بھول جاتے ہو.
یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میں کوئی غلط حرکت دیکھوں تو خاموش رہوں یا آگے بڑھ کے گزارش اور استدعا کی صورت میں اپنی بات کروں؟ پتا نہیں اس کے موبائل میں کیا تھا جو سمانا کو دکھا رہی تھی وہ سڑک پہ سب کے سامنے. اگر آپ میری جگہ ہوتے کیا کرتے بتائیں نا, کیا کرتے؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آرام اور پیار سے آگے جا کے اپنی بیوی سے بات کرتے. ارے میں اسے 100 دفعہ کہہ چکا ہوں مجھے وہ لڑکی اچھی نہیں لگتی. سمانا صاحبہ, تم جاب کرتی ہو, مجھے اچھا نہیں لگتا, میں نہیں چاہتا, پر ایسا لگتا ہے جیسے میں اس سے نہیں دیوار سے بات کر رہا ہوں. یہ وہی کام کرتی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے. اور پھر یہاں آ کر جو جی میں آئے آپ سے کہتی ہے. خدا شاہد ہے, خدا شاہد ہے, وہ منظر جو میں نے دیکھا اگر آپ دیکھتے تو اس سے برا سلوک کرتے جو میں نے کیا. واللہ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ نے فاطمہ صاحبہ سے کہا کہ کام پر نہ جائے. کیا انہوں نے بات نہیں مانی؟ مانی کہ نہیں مانی بتائیے نا آپ.
تمہاری بات ختم ہو گئی؟
جی آپ بتائیے.
اب میری بات کاٹو گے تو نہیں؟
نہیں بالکل نہیں, آپ بتائیے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ تم خود کو کیوں دوسروں کے ساتھ مقایسہ کرتے ہو؟ میری اور فاطمہ کی جب شادی ہوئی تھی تو ہم نے خود اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کی. جب میں اپنی بیوی سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو وہ مانتی ہے, یہ ہم دونوں کے بیچ مسئلہ ہے.
مطلب وہ مان گئی نا, ہم بھی اسی طرح چاہتے ہیں. معاف کیجئے گا جناب,
لیکن یہ بات کہ تم جو بھی کہو گے سمانا اس کو بیچوں چرا قبول کر لے, یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں بات کرنا ہے. شاید سمانا تمہاری خواہش کے مطابق زندگی نہ گزار سکے.
کیا مطلب؟
جہاں تک مجھے یاد ہے کہ تم نے میرے سامنے بات قبول کی تھی کہ سمانا جاب کر سکتی
ہے. جناب میں نے غلطی کی, میرا منہ ٹوٹے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جب بھی تمہاری رائے بدلے گی سمانا کو بھی اپنا راستہ بدلنا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟
سمانا خود جانتی ہے کہ میرے دل میں کیا ہے, جانتی ہے کہ میں نے کیوں کہا کام پر جاؤ. وہ یونیورسٹی چاہتی ہے, کام نہیں مل رہا ہے, پھر بھی میں نے کہا جانا تو جاؤ. اگر یہ لڑکی بیچ میں نہ آتی تو اسے ساری عمر کام نہ ملتا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر جگہ چاہو اس کو بے عزت کر دو؟
بے عزتی کی کون سی بات ہے قاسم صاحب, آپ بات کو خامخواہ بڑھا رہے ہیں. کون سی بے عزتی؟ آپ سمانا کو بلا کر پوچھیں میں نے اسے کون سا ایسا کام کیا کہ جس سے بے عزتی ہو, اس کی حملے کا نام دے رہے ہیں. ارے میں تو آگے سے بڑھا تھا تاکہ دیکھوں اس کے موبائل میں کیا ہے, پر اس کے موبائل میرے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا. ارے حملہ اور بے عزتی کیسی؟ سمانا کو بلا لیں تاکہ آ کر بات بتائے. خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے ڈروں. دیکھوں تو کیا کہتی ہے, کس چیز کو بے عزتی کا نام دے رہی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اور سمانا کو اپنے فیصلے کے بارے میں مزید سوچنا ہوگا.
مجھے اور کچھ نہیں سوچنا, میں نے پہلے دن شادی کا ارادہ کیا تو اچھی طرح سوچ لیا تھا. اب جس کو سوچنا ہے وہ سمانا ہے.
ٹھیک ہے, تو سمانا کو سوچنے دو کہ وہ کیا اس طرح بن سکتی جس طرح تم چاہتے ہو. اگر اس کا نظریہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو تم چاہتے ہو تو ناراض نہ ہونا. آج کی انڈرسٹینڈنگ کل کی لڑائیوں سے بہتر ہے.
دوبارہ سوچے آپ ذرا, مجھے اپنے بیٹی کی جہاں رکھ کر سوچیں, اس نے پہلے دن کیوں نہیں سوچا؟
یہ شرح جو تم نے ابھی بتائی ہے بالکل نہیں ہے. یہ کہ کام پر نہ جائے, دوستوں سے نہ ملے, ان کے ساتھ نہ جائے, یہ سب نئی باتیں.
ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں, بس اس کو بھی بلائیں تاکہ میرے سامنے اپنی رائے بتائے.
ابھی نہیں, ابھی تم پریشان ہو. میں سمانا سے بات کرتا ہوں تاکہ وہ خوب سوچے سمجھے اور اس کو اگلی ملاقات کے لیے ہم باتیں تیار کریں. ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت آپ کا. خدا حافظ.
خدا حافظ. کیا ہوا؟
سمانا کو بلاؤ ذرا.
سمانا ادھر آؤ.
تم نے اس کی بات سنی؟ بہرحال جو کچھ میں نے دیکھا کچھ اچھا نہیں تھا. تمہاری اسماعیل کے ساتھ بن نہیں سکتی. بیٹی جتنی جلدی ہو سکے انکار کر دو. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے, میں نے صرف رائے دی ہے. فیصلہ صرف اور صرف تمہارا ہے.
خواہ مخواہ میں خود کو پریشان نہ کرو، اس کمینے کے کاموں سے نظر آ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔
اگر نظر آ رہا تھا تو مجھے کیوں کہہ رہی تھی کہ اسے لبھاؤں تاکہ تمہارے ناز اٹھائے؟
ہاں میں نے غلطی کی، لیکن تمہاری باتوں کی وجہ سے میں دھوکے میں آ گئی۔ تم ہی تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ فرحات تم سے پیار کرتا ہے، اتنی آسانی سے مجھے نہیں بھول پائے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا۔
بہت بے وقوف تھی فرانک۔
اچھا تو اب یہ ساری لڑائی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ آدمی گھر کے اندر کیوں آیا تھا؟
نہیں بھائی کیا بات ہے، یہ تو ایک بہانہ تھا، وہ مجھ سے جان چھوڑانے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔
جائے جہنم میں، اچھا ہوا جو چلا گیا، کم از کم اس طرح سے اتنی تو سمجھ آ گئی کہ جس قبر پر تم رو رہی ہو اس میں کوئی ہے ہی نہیں۔
اس نے مجھ سے بہت بری باتیں کی فرانک، حالانکہ صاف صاف کہہ سکتا تھا کہ میں تم سے تھک گیا ہوں، تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھ پہ کیا کیا الزامات لگائے۔
رونا مت سہار، ایسے لوگوں کی باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں۔ اس مسئلے کو اس نظر سے دیکھو کہ تمہاری آنکھیں کھل گئیں اور آئندہ اس کمینے سے کوئی آس نہیں لگانا۔
جانتی ہوں میں نے زندگی کے کتنے بہترین سال فرحات پر فدا کیے ہیں، اس کی خاطر اپنی نہایت عزیز و پیاری چیزوں کو چھوڑا۔ غصہ اس بات پا رہا ہے کہ کتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ میری توہین و تحقیر کر کے چلا گیا۔ یہ بات مجھے بالکل ہضم نہیں ہو رہی۔ اس کو ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گی۔